ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूनं। कायोत्सर्ग तो मृत्यु महोत्सव के अंतिम तीन काव्य बचे थे, उनको देख लेते। 16वां काव्य तप्तस्य तपसश्चापि तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्युः समाधिना तप्तस्य तपसश्चापि तपश्चापि नहीं तपसश्चापि तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्युः समाधिना। तप्तस्य तपसः तपे हुए तप का, पालितस्य व्रतस्य सुरक्षित किए गए व्रत का, और पठितस्य श्रुतस्य पढ़े गए शास्त्र का। अपि अपि शब्द दिए हैं दो बार, इन सभी का फलम फल क्या है? समाधि नाम मृत्यु हूँ, धर्म ध्यान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करना। मैंने ये सब कुछ किया, क्या क्यों किया? ये तो दूर का लक्ष्य तो ठीक है, संवर निर्जरा मोक्ष, लेकिन साक्षात इस भव में आपको क्या चाहिए? इतना सब करने के परिणाम स्वरूप आप तपस्या तप रहे हैं, व्रतों का पालन कर रहे हैं, या फिर शास्त्र पढ़ रहे हैं, इन तीनों का फल क्या है? समाधि ना मृत्यु, समाधि मरण है। समाधि का अर्थ क्या है? धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, पंचम काल की अपेक्षा ले लो तो धर्म ध्यान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करना। तपे हुए तप का जो फल है, व्रत पालन का अन्य नहीं, और पढ़ा जो धर्म शास्त्र को उसका फल भी एक वही। सकल धर्म का वह अनुपम फल प्रभुवर ने भवहरण कहा, जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत स्वर्ण कलश सन्मरण महा। अति परिचितेष्वज्ञा नवे भवेत् प्रीतिरितिः जनवादः, नवे भवेत् प्रीतिरितिः जनवादः चिरतर शरीर नाशे नवतर लाभे च किं भीरुः। अतिपरिचितेष्वज्ञा नवे भवेत् प्रीतिरितिः जनवादः चिरतर शरीर नाशे नवतर लाभे च किं भीरुः। अति परिचितेषु, जो अति परिचित हो जाते हैं उनके प्रति अवज्ञा होती है। अवज्ञा का मतलब जैसा आदर होना चाहिए वैसा आदर नहीं रह पाता, अनादर होने लगता है, अवमानना होने लगती है। जैसे दामाद आते हैं स्वागत होता है, घर जमाई बन जाते हैं तो अनादर होता है। तो अति परिचितेषु अवज्ञा, जो अति परिचित होते हैं उनके प्रति अवज्ञा होती है। और नवे, जो नवीन है उसके प्रति प्रीति ही प्रीति होती है, प्रेम होता है। प्रीति ही भवेत, प्रेम होता है। इति ही जनवाद, ऐसा ही जनवाद यानी ऐसी ही कहावत है। माने सारी जगत में यही बात प्रसिद्ध है कि नई चीज मन को पसंद आती है, पुरानी चीज में मन नहीं लगता। तो यहां पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि चिरतर शरीर नाशे, तेरे साथ भी वही काम हो रहा है, तेरे साथ भी वही घटना घटित हो रही है। संलेखना तूने धारण की तो अब क्या हो रहा है, चिरतर बहुत पुराना जो तेरा शरीर है वो नष्ट होने वाला है। तो पुराने शरीर के नष्ट होने पर और नवतर लाभ है, नया शरीर तुझे मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है उसकी आत्मा ऐसे हवा में भटकती रहे, नहीं। एक शरीर छूटता है, चौथे समय में दूसरे स्थान पर वो अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाता है। क्या एकम द्वौ त्रीन वा नाहारक विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः, चौथे समय के अंदर प्राक चतुर्भ्यः पहले चला जाता है, अपनी जगह पर पहुंच जाता है। यहां से मरण हुआ, अब जहां उसको जन्म लेना है वहां वो चौथे समय के अंदर पहुंच ही जाता है। तो नवतर लाभ, नया शरीर, नवतर एकदम नया फ्रेश लाभ है, उसका लाभ हो रहा है। तो पुराने का नाश हो रहा है, नए का लाभ हो रहा है। तो किम भीरु, क्यों डर रहा हो, डरने की क्या बात है। बोले लोकोक्ति क्या कह रही है, कहावत क्या कह रही है कि नए में व्यक्ति का लगाव होता है और पुराने में अलगाव होता है। तो फिर तुम्हारा पुराना शरीर जा रहा है, नया आ रहा है, तो फिर किम भीरु, क्यों डरते हो। जहां कहीं अति परिचय होता वहां अवज्ञा हो जाती, कहे दूर के ढोल सुहाने प्रीति नए पर ही आती। करो भव्य चरितार्थ कहावत, जीर्ण देह को जाने दो, होकर अभय अहो चेतन को, अब नूतन तन पाने दो। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अब जैसे वस्त्र भी है ना, नए वस्त्र पहनो तो दर्पण में कितनी देर देखते हैं आप, और पुराने पहन करके कितनी देर देखते हैं। इसी में समझ में आ जाता है कि नए पर लगाव होता है व्यक्ति का, पुराने पर कोई लगाव नहीं रह जाता। इसी प्रकार कह रहे हैं कि जहां कहीं अति परिचय होता वहां अवज्ञा हो जाती, कहें दूर के ढोल सुहाने प्रीति नए पर ही आती। करो भव्य चरितार्थ कहावत, इस कहावत को तुम चरितार्थ कर दो। बोले मरते समय लोग तो उल्टा काम करते हैं, पुराने के प्रति प्रीति करते हैं, मरना नहीं चाहते, डरते हैं। तो बोले कि तुम चरितार्थ कर दो, जीर्ण देह को जाने दो, पुराने शरीर को जाने दो, छूट जाने दो, और होकर अभय निर्भय होकर के अहो चेतन को अब नूतन तन पाने दो, चेतन को अब नए तन को प्राप्त कर लेने दो, डरो मत। अब आखिरी छंद, स्वर्गादित्य पवित्र निर्मल कुले संस्मर्यमाणा जनैर दत्त्वा भक्ति विधायिनां बहुविधम् वांछानुरूपं धनम् भुक्त्वा भोगमहर्निशं परकृतम् स्थित्वा क्षणं मण्डले पात्रावेश विसर्जनामिव मृतिम् संतो लभन्ते स्वतः। बहुत सुंदर काव्य। अब देखिए वहां पर उसने पुराने शरीर को छोड़ दिया, अब छोड़कर कहां गया? संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ने वाला कहां गया? स्वर्गलोक में। अब स्वर्गलोक में वहां तो खैर वहां का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर जो है सो है। तो स्वर्ग में अपनी अवधि पूर्ण करके स्वर्गात स्वर्ग से यानी देवलोक से एत्य पवित्र निर्मल कुले एत्य वहां स्वर्ग से अपनी आयु पूर्ण करके पवित्र और निर्मल कुल में एत्य आ करके। अब पवित्र और निर्मल इसका क्या अर्थ है? पवित्र का अर्थ होता है निष्कलंक और निर्मल कुल अथवा पवित्र का अर्थ जिसमें महापुरुषों का जन्म हुआ हो या जिसमें ऐसे सज्जन साधु पुरुष जन्म ले चुके हों जिन्होंने मुनि दीक्षा आदि धारण की हो वो पवित्र कुल हो गया। और निर्मल का अर्थ होता है कि वर्तमान में भी किसी ने कोई ऐसे अनाचार या कोई ऐसे दुष्कर्म के द्वारा कलंक न लगाया हो। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे कुल में भी किसी की गलती से कलंक लग जाता है। तो यहाँ दोनों तरफ से माने एक तो वंश परंपरा अच्छी चली आ रही हो वो पवित्र हो और निर्मल का अर्थ आज भी उसमें किसी प्रकार का मल यानी कलंक न लगा हो ऐसे कुल में। देखो स्वर्ग में उसने आयु पूर्ण की, पिछले संलेखना के पुण्य की वजह से उसको ऐसे कुल में जन्म मिल रहा है। वहां पर एत्य आकर के वह, अब यहां बहुवचन ले लो क्योंकि स्वर्ग में तो बहुत सारे संलेखना करने वाले जीव इकट्ठे होंगे। यहां से तो कभी कदाचित एकाध ने संलेखना की लेकिन देवलोक में विमानों में तो बहुत सारे जीव ऐसे आते रहते, लंबी आयु है ना तो एक के बाद दूसरे तीसरे सब मिले और उसके बाद फिर वहां से आकर के फिर कई बार एक परिवार में वो लोग जन्म ले लेते हैं। जैसे अकृत पुण्य का दृष्टांत आपको मालूम है, वो सारे के सारे रिश्तेदारी बने यहां पर आकर के। तो आकर के वो भव्य लोग क्या करते हैं? भक्ति विधाई नाम, जो जिनेन्द्र भगवान की देवशास गुरु की भक्ति करने वाले लोग हैं उनके लिए दत्वा जो भी जरूरत है उसकी पूर्ति प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देवलोक से भी अगर वो मनुष्य पर्याय में आते हैं तो इतने धन संपन्न बनते हैं, वैभवशाली बनते हैं कि किसी भी धार्मिक मनुष्य को जरूरत हो तो उसकी ये पूर्ति कर सकते हैं। और क्या देते हैं? बहुविधम वांछानुरूपम धनम दत्वा, बहुत प्रकार का वांछानुरूप यानी जो उनकी इच्छा हो जिसकी जरूरत हो उनके वो धन दे करके। अब धन जरूरी नहीं है कि सिर्फ रुपये पैसे ही हो, कभी किसी को आवास की जरूरत हो तो उसके लिए आवास प्रदान कर देते हैं, कभी किसी को और किसी चीज की जरूरत हो तो वो औषध की जरूरत हो तो वो दे देते हैं। तो ऐसा दे दान कर करके जने ही संस्मर्यमाणा संत, जनता में स्मरण के पात्र बन जाते हैं यानी एकदम यादगार हो जाते हैं वो कि देखो कैसे दानवीर थे। बोले थे नहीं अभी तो खैर हैं, अभी आगे होंगे थे तो कैसे दानवीर है, बोले कितने निस्वार्थ भाव से सबको देते हैं। संस्मर्यमाणा संत माने लोगों के संस्मरण में वही बात आती है कि थे वो एक जमाना था कि जब ऐसे दानवीर भी हुए हैं यहाँ हिम्मतनगर में, ऐसे हिम्मतनगर या कोई भी नगर एक्स वाई जेड ऐसा। अब जैसे एक चर्चा यहाँ पर आती है ना कि एक डॉक्टर साहब थे, एक वकील साहब थे जो बहुत निस्वार्थ सेवा करते थे और फिर उनकी शव यात्रा में हजारों की भीड़ थी, ऐसी चर्चाएं आती है। तो ऐसे जो लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर देखो संलेखना के परिणाम स्वरूप ऐसे लोग तो रहते हैं, तो वो जो आते हैं देवलोक से वो ऐसे लोग में गिने जाएंगे। पर आगे क्या करते हैं वो, अहर्निशम परकृतम भोगम भुक्त्वा। अहर्निश माने दिन रात, परकृतम का अर्थ होता है इंद्रिय जनित अथवा पुण्य प्रदत्त, भोगम भुक्त्वा, भोग का अर्थ होता है सांसारिक सुख, भुक्त्वा का अर्थ भोग करके। कहने का मतलब ये हुआ कि वो दान भी देते हैं और फिर स्वयं भी सांसारिक सुखों को भोगते हैं। ऐसा नहीं कि दान दे रहे हैं वहां पर दूसरों को खिला रहे हैं और खुद भूखे मर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो दान भी देते जा रहे हैं और स्वयं भी सांसारिक सुखों को भोगते हैं, रात दिन भोगते हैं। और फिर मंडले, मंडले का अर्थ होता है इस धरती भूमंडल पर, एव मानो क्षणम स्थित्वा, कुछ ही दिन रह करके चले गए। जैसे क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनका समागम लंबा भी मिले तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत दिन हो गए, लगता है कि इतना जल्दी समय निकल गया, इतना कम समय, ऐसा लगता है। जैसे राम जब विहार करते हैं, वन विहार करते हैं, तो जहां जहां ठहरते हैं तो वहां मान लो हफ्ते भर ठहर गए या फिर एक महीने ठहर गए, लेकिन जब जाते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि अरे इतने जल्दी चले गए, ऐसा लगता है। मतलब वो कम समय लगता है। तो वैसे ही ये लोग इतने अच्छे लोग रहते हैं जो संलेखना करके देवलोक से यहाँ आते हैं कि फिर उनके क्षणम स्थित्वा, लंबी आयु भी क्षण भर में निकल जाती है, थोड़े ही समय में मानो निकल गई हो इस तरह। फिर स्वतः अपने आप, देखो अब यहाँ पर किसी के दबाव में आकर के नहीं, अपने आप पात्रावेश विसर्जनाम मृतिम। अभी तक अनादिकाल से कितने पात्रों का आवेश इस जीव ने धारण किया, वेश तो धारण किया ही है लेकिन अंदर जो भाव होते हैं ना, जैसे अभी मनुष्य पर्याय में आपका जो शरीर है वो मनुष्य का वेश हो गया, और अंदर जो मनुष्य संबंधी भाव होते हैं वो मनुष्य का आवेश होता है। जैसे रामलीला खेलते समय, बार बार अभी राम राम की चर्चा आ रही है मौसम वही आ गया है, तो उस समय जो हनुमान का रोल करने वाले होते हैं वो उसी आवेश से बात करते, तेवर से, आवेश का मतलब तेवर, वेश धारण करता है और उसी आवेश में रहता है। तो पात्रों के आवेश का है विसर्जन जिसमें, अब क्या अंतिम जो मरण होना है उनका संलेखना पूर्वक, ये आखिरी मरण की बात चल रही है, तब क्या होगा कि सब प्रकार के जो पात्र बना था वो अनादिकाल से संसार में, हर पात्र का उसने रोल किया हुआ है, त्रियंच बना है, नारक बना है, देव बना है, मनुष्य बना है, और इसमें भी जितने भेद प्रभेद हैं, कहां नहीं बना है जाकर के पात्र, और सब प्रकार के आवेश उसने धारण किए। इन सब पात्रों का और आवेशों का है विसर्जन जिसमें, ऐसी मृतिम यानी पंडित, पंडित मृत्यु को, मरण को यानी अंतिम मरण को, निर्वाण को लभन्ते, वो प्राप्त कर लेते हैं। यानी संलेखना का अंतिम परिणाम क्या हो गया, निर्वाण। सुरपति का साम्राज्य भोग कर, अब देखिए इसमें पद्यानुवाद में हमने सुरपति लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि पहले एक श्लोक आया था कि उपवास पूर्वक संलेखना मरण करने वाले को क्या प्राप्त होता, 15वां काव्य अमरेश्वर, तो उसका यहां पर अनुवर्तन लेकर के सुरपति शब्द लिया है। सुरपति का साम्राज्य भोग कर, नर भव सुकुल सुयश पाते, दान पुण्य में अभिवांछित धन, प्रभु भक्तों पर बरसाते, सुख समृद्धि में जीवन के दिन, मानो पल में कट जाते, भव का नाटक छोड़ अंत में, संत स्वयं शिव पद पाते। इस प्रकार ये मृत्यु महोत्सव का स्वाध्याय यहाँ पर काव्य परक ढंग से तो पूर्ण हो गया है। देखो कुछ बातें अगर रह गई हो तो वो देख लेते हैं एक झलक। ऐसे कि ये संबोधन भी बहुत काम में आ सकता है। अभी पिछले वर्ष हमने 9 अक्टूबर को इसकी अंतर्ध्वनि बनाई थी। ये जो 18 काव्य है ना, इनका पद्यानुवाद और अन्वयार्थ अभी आपने सुना था, इनकी अंतर्ध्वनि हमने बनाई थी। ये अंतर्ध्वनि ऐसी है कि जैसे कोई ऐसी गंभीर स्थिति में हो तो उसको ये सुना दी जाए तो फिर एकदम उसको राहत मिल जाए। जैसे कैसे एक प्रवाह में है, मृत्यु मार्ग पर अग्रसर मुझे मुक्तिपुरी पहुँचने तक का मार्ग व्यय बोधि और समाधि के रूप में वीतराग प्रभु प्रदान करें। जिनेंद्र भगवान मुझ संलेखनाधारी को समाधि मरण प्रदान करें जो मुक्ति पर्यंत चलने वाली मेरी साधना यात्रा में सहायक हो। देह एक पुराना एवं जीव जंतुओं से भरा पिंजरा है, अतः हे आत्मन इसके नष्ट होने पर तुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है, तू तो ज्ञान शरीरी है ना। हे ज्ञानी जीव तेरी मृत्यु एक महोत्सव बनकर आई है, रत्नत्रय स्वरूप में स्थित आत्मा अब इस जीर्ण शरीर को छोड़कर एक दिव्य नवीन शरीर में रहने जा रही है, घर बदलते समय डर कैसा, यह तो आनंद का अवसर है। अतीतकालीन भव्य जीवों ने मृत्यु की कृपा से ही सुपात्रों को प्रदत्त दान का फल एवं स्वर्गीय सुख प्राप्त किया था, ऐसे पुण्य फल को प्रदान करने वाली मृत्यु से सदाचारी मनुष्य क्यों घबराएगा। तन पिंजरे में कर्मों द्वारा बंधनबद्ध आत्मा ने गर्भावस्था से अनेक कष्ट उठाए हैं, मृत्यु रूपी राजा के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मुझे इस कारावास से मुक्त करा सके। आत्मदर्शी साधक मृत्यु रूपी मित्र की कृपा से ही सर्व दुखों के पिंड इस शरीर रूपी पिंड से पिंड छुड़ाकर सुख संपत्ति को प्राप्त करते हैं, मृत्यु मित्र से भय कैसा। वास्तव में समाधि मरण कल्प तरु है, अवसर प्राप्त करके भी जो कुमरण करते हैं आत्मा का हित नहीं साधते वे मनुष्य भव को खोकर संसार के कीचड़ में जा पड़ते हैं। स्वर्णिम अवसर को गंवाने वाले अभागे मानव अपना भव बिगाड़कर भविष्य में क्या आत्मकल्याण कर सकते हैं। जिस मृत्यु से वृद्धावस्था द्वारा जर्जरित शरीर आदि यहीं छूट जाते हैं और नवीन सुंदर देहादि प्राप्त होते हैं, क्या वह मृत्यु पुण्योदय की भांति सज्जनों के मन को आनंदित नहीं करेगी, अर्थात अवश्य करेगी। शरीरधारी जीव सदैव सुख दुख का वेदन करता है और आयु पूर्ण होने पर स्वयं शरीर छोड़कर चला जाता है, ऐसे में यथार्थतः मृत्यु भय किसे हो सकता है। अर्थात जब जीव स्वयं स्थानांतरित होता है तब डरने का प्रश्न ही कहां उठता है। संसार में आसक्त मन वाले जीवों की मृत्यु भय का कारण बनती है क्योंकि वहां इष्ट वियोग है, परंतु ज्ञान और वैराग्य संपन्न जीवों की मृत्यु उन्हें भयभीत नहीं आह्लादित करती है। जब जीव अपने पुण्य फल को जानने की इच्छा से इस अपवित्र शरीर को विसर्जित कर महाप्रयाण करता है तब उसे पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश के प्रपंचों द्वारा कौन रोक सकता है, अर्थात मरणोन्मुख मानव को मरण से कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु के समय यदि कोई व्याधि जनित पीड़ा उत्पन्न हो जाए तब अनिष्ट चिंतन न करके यही समझना कि यह पीड़ा मेरे देह मोह को नष्ट करने आई है, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि कष्ट बिना सुख नहीं प्राप्त होता, यह कष्ट मुझे मोक्ष सुख प्रदान करेगा क्योंकि प्रतिकूलता में कर्मों का क्षय तीव्र गति से होता है। जिस प्रकार लोक में कच्चे घड़े को अग्नि में तपाकर ही पकाया जाता है पश्चात वह जल को धारण करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार जो साधक समाधि मरण में तप कर खरा नहीं उतरा वह मोक्ष के अमृत को अपने में धारण नहीं कर सकता। जिस फल को सज्जन मनुष्य व्रताचरण संबंधी प्रयत्न के क्लेश उठाकर प्राप्त करते हैं, मृत्यु काल में समाधि द्वारा वही फल सुख साध्य अर्थात अनायास प्राप्त हो जाता है। जो पीड़ित नहीं है शांत है और जीवन के अंतिम दिन उपवास पूर्वक धर्म ध्यान में तत्पर है, वह तिर्यंच और नरक गति में उत्पन्न न होकर देवों का इंद्र बनता है। तपे गए तप का, पाले गए व्रत का और पढ़े गए शास्त्र का एक फल समाधि पूर्वक मरण का वरण है। अति परिचय से अवमानना होती है और नवीन वस्तु से प्रीति, यह लोक प्रसिद्ध कहावत है। तेरा पुराना शरीर छूट रहा है और तुझे नया शरीर मिल रहा है, तब डरता क्यों है? स्वर्ग में दिव्य देह पाकर वहां से पुनः मनुष्य लोक में आकर महापुरुषों के जन्म से पवित्र और दुराचार रहित निर्मल कुल में उत्पन्न होकर दान पूजा में धन व्यय करके लोक प्रतिष्ठा पाकर अहर्निश सांसारिक सुख भोग कर मानो क्षण भर ही धरती पर ठहर कर अंततः नाटकीय पात्र के आवेश अथवा वेश को उतारने के समान संन्यास धारण कर परम मृत्यु निर्वाण को वे भव्य जन प्राप्त करते हैं। समाधिकरण मरण करने वाला जीव 3 से 8 भवों में अवश्य मोक्षगामी हो जाता है। इस प्रकार ये इसका सारांश हो गया। मृत्यु महोत्सव का स्वाध्याय अब यहाँ पर चातुर्मास में जो चला था वो संपन्न हो जाता है। अब कार्तिकीय अनुप्रेक्षा और सर्वार्थ सिद्धि 2 ग्रंथों का स्वाध्याय पूर्ण होना बाकी है और रामायण भी बाकी है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धूप।